ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं धम्मो वत्थु सहावो खमादिभावो यदसविहो धम्मो चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्षणो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, जिसको कहते हैं वस्तु स्वभाव धम्मो। और यहाँ तो यहाँ दशलक्षण धर्म की बात हो रही है, धर्म के दशलक्षण बताए हैं। दस प्रकार के जुदे जुदे धर्म नहीं होते, वितरागता ही धर्म है। और वो वितरागता समझाने के लिए उसको अलग अलग एंगल से अलग अलग लक्षणों के द्वारा उसको यहाँ समझाया जा रहा है। है तो धर्म एक ही, और हमें धर्म प्रकट करना है तो हम कहते हैं चारित्रो खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। तो चारित्र कहना किसको, तो कहते आत्मा में जो रमणता है वही चारित्र है। चारित्र जीव का गुण है, चारित्र जीव का स्वभाव है। और वो अपने में ही जो अपने को पहचान कर अपना ही ज्ञान उसी में लगा देना, उसी में एकाग्र होना, उसके कारण जिसको हम स्थिरता कहते हैं। तो जीव के जैसे गुण है, जैसा स्वभाव है, वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है, तब हम कहते हैं ये चारित्र है। चारित्र कहीं बाहर से नहीं आता है। ये व्रत तपो को चारित्र कह देते हैं, कहना बात जुदी है, और जो मूल चारित्र क्या है उसकी बात जुदी है। इसलिए यहाँ कहते हैं चारित्र ही खरेखर धर्म है। परंतु वो चारित्र धर्म है, परंतु उस चारित्र का मूल क्या है, तो कहते सम्यक दर्शन। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, मैं स्वयं कौन हूँ ये नहीं पहचाना है, तब अपने में वो स्थिरता कैसे करेगा और चारित्र कैसे प्राप्त होगा। इसलिए चारित्र का भी मूल क्या है, दंशन मूलो धम्मो। चारित्र को चारित्तम खलु धम्मो कहते हैं, परंतु उसका मूल, उसकी जड़ क्या है, तो दंशन मूलो धम्मो। दंशन यानी भगवान का दर्शन, वो दर्शन नहीं। दर्शन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक यानी यथार्थ, और दर्शन यानी यहाँ प्रतीति, श्रद्धान कि मैं कौन हूँ इस बारे में अनुभव पूर्वक प्रतीति, उसको प्रतीति कहते हैं। ग्रंथ में से हमने जान लिया, हमने रट लिया, हमने परिभाषा सुना दी, उसको उसका अनुभव, उसकी प्रतीति नहीं कहते हैं। क्योंकि लोगों की ऐसी मिथ्या मान्यता चलती भी है, ऐसा परस्पर उपदेश भी देता है कि नहीं, हमने ये सात तत्वों के नाम अच्छे रख लिए हैं, हमने सुन लिए हैं, और हमारा भगवान की वाणी पर विश्वास है, यही सम्यक दर्शन है। तो कहते ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन ने आत्मानुभूति गृहस्थ अवस्था में प्राप्त करने की चीज है। क्योंकि ऐसी मान्यता चलती है कि मुनि हुए बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती, शुद्धोपयोग नहीं होता, ये बात आगम से विरुद्ध है। किसी भी आगम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पास कुंकुंदाचार्य आदि अनेक आचार्य हुए हैं, और उन्होंने जो आगम लिखे हैं उसमें सर्वत्र ये बातें लिखी हुई पाई जाती है। यानी भले वो गुणस्थान की बात हो, या जो षटखंडागम हो, धवला महाधवला जयधवला हो, सर्वत्र ये बात नक्की है कि गृहस्थ अपने घर में रहते हुए चौथा गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत ने असंयत है, वो संयम नहीं है उसके, और फिर असंयत सम्यक दृष्टि है। अभी उसके व्रत आदि नहीं है, अन्य बाहर कोई उसको जिसको हम कहेंगे ना यम नियम धारण नहीं किए है, फिर भी तत्व विचार के बलबूते पर उसको आत्मा की अनुभूति होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने भी लिखा है कि देखो तत्व विचार की महिमा क्या करता है। उसके कोई व्रत आदि नहीं है, अन्य कोई तपश्चरण नहीं है, फिर भी उसके सम्यक्त्व हुए है। कैसे होता है सम्यक्त्व, तो तत्व के विचार से। तत्व का विचार का ही अर्थ है, जैसे सात तत्वों के बारे में जो हो सही श्रद्धा होगा, देवगुरु शास्त्र के संबंध में जो कुछ है, मोक्ष मार्ग के संबंध में जो उपदेश मिलता है, जो निश्चय और व्यवहार क्या है, निमित्त उपादान क्या है, क्रमबद्ध पर्यायनी क्या है, षटकारक क्या होते हैं, ये चार अभाव क्या है, ये छह सामान्य गुण क्या है, उसका कार्य क्या है, ये सब इन तत्वों के बारे में जब हम विचार करते हैं, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम स्वयं उसमें लीन हो जाते हैं, तो उस काल में जो कुछ कर्मों की अवस्थाएं स्वयं वह चेंज हो जाती है और जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। यानी तत्व विचार से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और हमें लगता है कि हमने कुछ किया तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति। हाँ, जो संयम पहले धारण ने बाह्य संयम जिसको कहेंगे उसको संयम नहीं कहते, उसको क्या कहते वो हम देखेंगे। तो जिन्होंने बाह्य व्रतादि अंगीकार किए हैं ऐसे भी जीवों को यदि सम्यक्त्व होना है तो कहते वो तत्व विचार से व्रतों के कारण वो सम्यक्त्व या व्रतों के कारण गुणस्थानों का आरोहण यानी ऊपर के गुणस्थान प्राप्त नहीं होते हैं, आत्मा की अनुभूति से ही ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं। यही एकमेव मार्ग है, ऐसा कोई सीधा मार्ग है और कोई ऐसा व्यवहार का दूसरा मार्ग है, ऐसे दो मार्ग नहीं है। मार्ग तो एक ही होता है, उसका कथन दो प्रकार से होता है। आपके घर में वो चाय की बरनी है, चाय से बनी हुई नहीं तो काहे की, स्टील की। तो स्टील की बरनी को स्टील की कहना ये कथन में आता है, निश्चय व्यवहार ये कथन में होता है, वो प्रवृत्ति में नहीं होता। तो आपके घर में स्टील की बरनी है उसको स्टील की कहना यह निश्चय, और उसी स्टील की बरनी को उसमें चाय रखी है तो उसको चाय की बरनी कहना यह व्यवहार। बरनी तो एक ही है और वो स्टील की है, परंतु उसको हम उपचार से व्यवहार नहीं उपचार से कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ तो ये जो सारा जो धर्म जो है वो जीव में अपने में होता है, परंतु जिसके ऐसे धर्म प्रकट हुआ है उसके अभी कुछ राग भाव विद्यमान है ना, शुभ राग अभी कुछ विद्यमान है, तो उसके राग भाव को भी धर्म कह देते हैं। संयम का हो या कोई भी अन्य भी बातें हो गई, तो यहाँ जो आत्मा की अत्यंत स्थिरता जो है मुनि योग्य तीन कषाय के उनके अभाव है यानी अनुदय है, यानी अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो कषाय नहीं रहे और उन कर्मों का उदय भी नहीं रहा, ऐसे जीवों की जो अंतरंग में वितरागता उत्पन्न हुई है इसको सकल संयम कहते हैं, उसको संयम कहते हैं। और ऐसे जीवों को बाह्य में हम देखते हैं तो उनके आचार कैसे होते हैं, तो कहते वो पांच महाव्रत आदि पालन करते हैं ना, मुनि दीक्षा की जो सारा उनके आचार है उनका पालन करते हैं, उसको संयम कह देते हैं, वो व्यवहार है, उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। उसका दूसरा नाम है, देखो ये ग्रंथों में भी उसका वर्णन आता है, ये हम अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे। देखो अभी आज का जो उत्तम संयम का जो विषय है तो उसका वर्णन करते समय ऐसा ही कहते हैं कि षटकाय के जीवों की रक्षण करना चाहिए, उसके रक्षा के परिणाम है वही संयम है, और उसके लिए जो मुनियों की जो कुछ प्रवृत्ति रूप जो समितियां वगैरह उसका वर्णन करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे भोजन लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उसको संयम कह देना ये बात अलग है और यथार्थ में संयम क्या है वो बात अलग है। इसको कहते ना व्यवहार से और निश्चय से, यानी आप आओ चाय पियो ये करो ये व्यवहार हुआ, हमने व्रतादि पालन किए व्यवहार हुआ, और आप आत्मात्मा कहते वो निश्चय, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसी के बारे में देखो हमें तत्व ज्ञान के बारे में अज्ञान है और हम ऐसे सुनकर कुछ बातों का अपने मन से अपनी कल्पना से उसका अर्थ लगाते हैं, परंतु हमें सभी अर्थ शास्त्र के आगम के अनुकूल लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे इतने मुनिराज हो गए हैं और उन्होंने सबने ग्रंथों की रचना करके रखी है, हम आगम खोल के देखे तो सही कि उसने क्या लिखा है, सभी हमारा समाधान आगम के द्वारा होता है, क्योंकि मुनिराजों को यहाँ इतना कितना समय है? वो आपको एक एक बातें समझाते रहे, उन्होंने तो लिख के वो चले गए और हमें वो कभी भी रात में भी निकाल कर देखो तो उपलब्ध है। ये आता है ना छह आवश्यक के गुरु की उपासना, गुरु की उपासना या गुरु की आज्ञा का अर्थ होता है गुरु ने जो उपदेश दिया है उसको समझना, वही उसकी आज्ञा है। आजकल क्या मिथ्या भ्रांति चलती है, अपने में इतनी नहीं है पर अन्य मतियों में चलती है, हम गुरु की आज्ञा लेते हैं, गुरु की आज्ञा लेते हैं, क्या आज्ञा लेते हैं, हमको ये धंधा करना ही करे कि नहीं ये गुरु की आज्ञा, ये हमको इधर जाना है, ये फलाना कार्य करना है, ये करूँ के नहीं वो गुरु की आज्ञा, ऐसी आज्ञा नहीं होती है। आज्ञा का अर्थ होता है उपदेश, जो गुरुओं ने मुनियों ने हमको उपदेश दिया है वही उनकी आज्ञा है, और हमें उस आज्ञा का पालन करना है। क्या आज्ञा दी उन्होंने कि तुम दुखी क्यों हो? अपने स्वयं के अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। अब सुख का उपाय करना है तो क्या करना पड़ेगा? तत्वों का अभ्यास करके अपना दुख का इलाज स्वयं कर सकते हैं। ये उनकी आज्ञा है, वो आज्ञा तो हमने कभी पाली ही नहीं है ना। और मैं ये करूँ क्या नहीं, वो करूँ क्या नहीं, अन्य मतियों में बहुत होता है। किसी को गुरु बना दिया, अब हमारा सारा बोझ वो ढोएगा। जैसे स्टेशन पर जाके कुली कर लेते हैं, सारा सामान का बोझ उसके माथे डाल देते हैं, ऐसे वो अन्य मतियों में ऐसी भ्रमणा चलती है। ये हमारे गुरु है, वही हमारा सब कुछ बोझ उठा लेते हैं, है ना। भगवान को भी क्या करा उन्होंने, भगवान को कैसा बना दिया, सबका काम करने वाला, सुपर सर्वेंट, ऑनररी सुपर सर्वेंट। नहीं, भगवान को क्या मानते हैं, हमको ये कर दो, हमारा ये कार्य कर दो, हमारा ये कार्य कर दो, सबका करने वाला ये भगवान है ना। गुरु को भी वैसे थोड़े स्टेज में, थोड़े से पैमाने में वो भी काम सारे सौंप दिए हमने। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ना ही गुरुओं का, यानी मुनियों का स्वरूप है। हमें जो मोक्ष मार्ग, देखो मुनियों ने मोक्ष मार्ग स्वयं वो आत्मा की अनुभूति पूर्वक ही बताया है। वो हमारे ऊपर उपकार है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो कोई तीर्थंकर तो है ही नहीं उपदेश देने वाले। तो मूल तीर्थंकरों का जो उपदेश हमें प्राप्त हुआ है, तो गणधरों ने और आचार्यों के आगे के आचार्यों की सिखाए, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, वो हमें आज उपलब्ध है। जो मूल सर्वज्ञ भगवान का उपदेश हमें आज भी उपलब्ध है, और हम उसको फॉलो करके अपना कल्याण कर सकते हैं। वो बातें हमें यहाँ देखनी है। तो यहाँ जो अपना विषय तो आज का संयम संबंधी है, तो हम अभी आपके हाथ में पुस्तकें नहीं है, संयम प्रकाश ग्रंथ जो है वो सूर्य सागर मुनि ने लिखा हुआ है, और उसकी बात मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ कहते संयम दो प्रकार का है, एक उपेक्षा संयम और एक अपरहत संयम। देखो संयम शब्द कैसे तैयार हुआ, सम और यम, यम है ना, जिसको हम कहते यम नियम वगैरह, ये नियम किसको कहते हैं और यम किसको कहते हैं बोले? यम नियम संयम आप गयो, ऐसा कुछ आता है ना काव्य का, तो यम किसको कहना और संयम किसको कहना, नियम किसको कहना,
जो कुछ समय के लिए लिया जाए वो नियम है।
बहुत अच्छा, जिसको हम मराठी में नेम लिया, नेम लिया कहते हैं ना, हाँ नेम है नियम, हाँ जो कुछ विशिष्ट काल के लिए, जैसे दशलक्षण अभी अपना पर्व चल रहा है, तो इस पर्व के लिए हमने कुछ नियम धारण किए हैं कि क्या क्या करेंगे, उसको कहेंगे नियम। और यम पूरे जीवन, यानी मरण तक जिसको हम वो हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं यम। तो ये यम और नियम है, जो हम जो कुछ क्रियाएं हम अंगीकार करेंगे कि हम ऐसा करेंगे और उसका बिल्कुल पालन करेंगे, निर्तिचार पालन करेंगे, हमने ऐसा यम धारण किया तो उसको कहते हैं शास्त्र में, धवला जी में लिखा है कि उसको कहेंगे द्रव्य यम। द्रव्य यम का अर्थ क्या है कि जो कुछ ये जो हमने आचार विचार जो कुछ धारण किए हैं वो तो यानी वो शरीर की क्रिया है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे क्या करेंगे वो सब जो हमने बिल्कुल वो मरण तक की बातें कि रात्रि भोजन का हमने त्याग कर दिया, मरण तक हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये ऐसे जो जो कुछ है, या मुनि संबंधी भी जो मुनि जीवन जिसको हम दीक्षा अंगीकार करते हैं और मुनिराज जो नियम ले लेते हैं और वो मरण तक उसको बराबर उसको निर्वाह करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उसको कहेंगे द्रव्य यम। हमने देखा था ना वो तत्वों में भी हमने देखा था भाव और द्रव्य से दो दो भेद किए थे। तो द्रव्य का अर्थ क्या है, ये शरीर की क्रियाओं की बात है, उसको यहाँ द्रव्य यम कहते हैं, शरीर और उसके वैसे परिणाम, शुभ परिणाम उसके, इसका नाम है द्रव्य यम। और जो सम्यक्तो पूर्वक मुनियोग्य वितरागता के साथ जो ये वही यम नियम पालन करते हैं उसका नाम है संयम, क्योंकि वो सम्यक्तो पूर्वक हो गए उसी का नाम होता है संयम। उन केवल चौथे गुणस्थान के योग्य वितरागता है, सम्य दर्शन तो है, पर ऐसा भी होगा ना कि चौथे गुणस्थान वाला है, गृहस्थ है, अब उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की, परंतु अभी ध्यान अवस्था में अभी उसको मुनि योग्य वितरागता नहीं हुई है, तीन कषाय टोकरी का नहीं हुई, चौथे गुणस्थान इतना सम्य दर्शन तो है तो हम उसको संयम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि समय दर्शन है और सारे निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो उसका गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। और चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत समय दृष्टि या असंयत समय दृष्टि, उसको असंयत भी कहते हैं, क्योंकि ये संयम वगैरह ये बाह्य जो क्रिया उनको संयम नहीं कहते। अंतरंग में जो क्या पोजीशन है उसके अनुसार उसका नाम है संयम। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, देखो नियम तो ऐसा है कि पहले मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि पूर्वक मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं, फिर जब ध्यान अवस्था में उनके वो सातवां गुणस्थान प्रकट होता है, यानी उतनी वो तीन कषाय के चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होती है और फिर छठा सातवां उनका रेगुलर चलता रहता है, तब उनको कहेंगे ये संयम प्रकट हुआ। गुणस्थानों का अभ्यास आपका हो रहा है ना यहाँ पर, तब उसको नाम होगा संयम। क्योंकि संयम की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के अगर हम भेद करेंगे, जिसको हम कहते हैं मार्गणा। मार्गणा शब्द सुना है? अभी आपको उस दिन बताया था ना, मार्गणा क्या होता है कि हमें संसारी जीवों का विभाजन करना है, अलग अलग अपेक्षा लगाकर उनके विभाजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे गति की अपेक्षा सभी जीव कितने गतियों में विभाजित हो जाते हैं? चार। तो क्या है वो? गति मार्गणा। लौकिक में भी हम देखते हैं, देखो हमें सभी अभी हमको जितना मानव जाति मालूम है तो उसके हम नेशन वाइज अगर उनको डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे भेद हो गए, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई अफ्रीकन है, ये अलग अलग भेद हुए। अभी हम दूसरी अपेक्षा लगाते हैं, पहली अपेक्षा भी भूल जाओ, दूसरी अपेक्षा लगाएंगे कि वो क्या करते हैं, यानी कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अन्य कोई कारागर है और कोई ऑफिसर है, जो कुछ है। अभी हमने अपेक्षा बदल दी, तो जो अफ्रीकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, जो डॉक्टर्स है वो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। पहले ग्रुप की बात अभी भूल जाना है, अभी नए ग्रुप तैयार हो गए क्योंकि हमें उसमें अपेक्षा, हमारा क्राइटेरिया बदल गया। ऐसे जो अलग अलग क्राइटेरिया लगाकर जीवों का विभाजन होता है उसको कहते हैं मार्गणा। इन नामों से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भाई ने बताया ना कि पहली बार सुनते हैं तो क्या क्या पोजीशन होती है, सबके अनुभव की बात है। तो ये हम बाजार से कोई वो मटका घड़ा लाते हैं नया कुमार के पास से, और उसमें क्या कहते हैं, हम पानी डालना चालू करते, ड्रॉप 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 ड्रॉप, तो बिल्कुल सूखा का सूखा दिखता है। हमने एक 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 करके 300 ड्रॉप्स डाले और फिर बाद में 301 ड्रॉप वहां गिरा तो कुछ गीला दिखाई दिया। तो पहले के जो पानी के बूंद उसमें गिरे थे उसने कुछ काम किया कि नहीं किया? आप कहेंगे वो 301 नंबर का ही पहले डालना था ना, उसको एक नंबर का कहते, 301 थोड़े ही कहते। तो उनका काम हुआ है। देखो ये हम आप सभी इससे परिचित है, अभी इतने सभी बहुत सारी माताएं बैठी है यहाँ, तो हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, अभी छोटे छोटे बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो वो बच्चा पैदा हुआ तो कब से उसके साथ बातें करना चालू करते हैं? अरे माँ को भले फुर्सत नहीं होगी परंतु उसके नानी है, दादी है और बाकी है, ये उसको एक महीने के बच्चे की तो बारात भी लेके आते हो, क्या क्या बारात में किसको बुलाएंगे, हाथी झुलाएंगे, क्या क्या सब बातें उसके साथ करते, ये मेरा राजा बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इतनी बातें सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते हैं सब। छह महीने में वो मामा बाबा बोलना चालू करता है और डेढ़ दो साल में इतना बोलता है कि सबकी बोलती बंद करके वो स्वयं सीख जाता है बोलने। ऐसा ही हुआ हमारे आपके यहाँ कहा प्रशांत भाई के यहाँ शिविर था ना, तब की बात है, पुणे में हम वो 95-96 में बहुत सारे शिविर किए थे हमने, तब की बात है। तो ऐसा ही हमने वो मटके वगैरह का उदाहरण दिया था। दूसरा एक उदाहरण दिया कि हमें तो दो ही लड़कियां, तो हमने सोचा कि हमारे बुढ़ापे का निर्वाह कैसा होगा, तो हमने नक्की किया कि हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। तो बच्चा गोद लेने का नक्की कर दिया तो हम गए अनाथालय में गए और वहां से बहुत सारे बच्चे देखे तो एक हमको बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत आंखों से ही पता चलता था कि बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमने नक्की कर दिया कि इस बच्चे को गोद ले लेंगे। तो सब कुछ उनके जो कुछ हाँ नहीं, छह महीने का बच्चा था ना, तो हमने सब नक्की किया। अपन एक अड़चन आ गई, क्या थी? वो मद्रासी था, साउथ इंडियन था बच्चा। तो हमने नक्की कर दिया कि अभी हम 6 महीने तक कन्नड़ सीखेंगे, बाद में वो बच्चे को गोद ले लेंगे। अच्छा ये है ना, बोलो बेटा आप ही को पूछ रही हूँ मैं। हाँ जो बात हम उनसे करते हैं उस बात उस लैंग्वेज में, ऐसा कोई अंग्रेजी बच्चा गुजराती बच्चा मराठी बच्चा बच्चे नहीं होते हैं। हमारे घर में जो हम भाषा बोलते हैं वो सीख जाता है सुनते 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 सुनते। तो ये तो वो हमारे उदाहरण तो उतने तक था, ये हमारे सब हो गए। जैसे वहाँ तो हमारे 8-8, 10-10 घंटे तक चलता था। रात को 10:30 बजे एक महिला जो बहुत समाज में प्रतिष्ठित ऐसी कोई कहलाती थी, बम्बई से आई थी, उन्होंने वो हमारा याद है आपकी, हाँ
समाज कार्य,
हाँ समाज कार्य करती थी, वो आ गई, हमें आपसे बात करना है। अच्छा आइए बोलिए, कुछ प्रश्न हो गए। वो बच्चे का क्या हुआ ये सब कुछ? हमने बोला बच्चा नहीं तो गोद लेने के लिए इतना मूर्ख हम थोड़े ही, आ बैल मुझे मार करने के लिए, अरे इतना अच्छा मौका है तो हम स्वाध्याय करेंगे तो क्योंकि बच्चे को गोद लेके उसको संभालते बैठेंगे। और दूसरी बात, ये तो हमने ऐसी कथाएं कहानियां बनाकर हम आपको सुनाते, जैसे कल वो सांप को लाया था ना आपने। क्योंकि दृष्टांत के द्वारा हमें अपनी भूल समझ में आती है, अरे बच्चा तो हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उस लैंग्वेज सीख जाता है। ऐसे ही ये शब्द हमारे लिए भले पहली बार सुन रहे वो बच्चे को कितनी बार सुनाते हैं, और यह हम एक बार सुनते हैं हमको समझ में नहीं आता इसलिए छोड़कर भाग जाने की कोशिश करते हैं। तो कहते कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं अंदर रजिस्टर हो जाता है, और ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है। हाँ शब्दों के अर्थ कैसे तैयार हुए थोड़ा समझ लेते हैं तो वो जानना आसान है। तो ये मार्गणायों में संयम की अपेक्षा उसके भेद करने थे। मार्गणा का विषय अपना चला ना कि अलग अलग क्राइटेरिया से हम संसारी जीवों के भेद करते, उसके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी हमको संयम अपेक्षा लगाना है, तो संयम की अपेक्षा से जीवों के कितने कितने भेद हो गए पहले हमको ये देखना है। किसी का अभ्यास है यहाँ पर? सरिता आपको याद है? नहीं याद, भूल गए। अच्छा याद है, संकोच होता है बोलने। हाँ बोलो। देखो पहले में पहले आप आसानी से लिखो, कोई तो बिना संयम के हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। और कोई संयम वाले हो गए, और बीच वाले कोई थोड़ा संयम है थोड़ा असंयम है। तीन तो मूल भेद हुए, क्या असंयम है, संयमासंयम है और संयमी है। अब जो संयमी है उसमें आप बोलो अभी। हाँ सामायिक है, छेदोपस्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म सांप्रा है, यथाख्यास है। तो ये सब हमारे लिए नए शब्द है। फिर भी हम असंयम किसको कहना उसको देखते। तो संयम के दो प्रकार थे, एक होता है इंद्रिय संयम और एक होता है प्राणी संयम। इसका दूसरा नाम है विरति, यानी उससे हटना, विरत होना, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। तो इंद्रिय संयम का अर्थ क्या होता है? देखो यह जीव 5 इंद्रिय और मन के जो विषय है, हमने एक बार वो विषय की बात समझाई थी। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, तो पुद्गल का जो स्पर्श गुण है उसकी जो पर्याय है उसको हम स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। ऐसे सभी 5 इंद्रियों का अपना अपना विषय होता है। आंखें सुनने का कार्य नहीं करेगी, तो आंखों का यानी चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? जो कुछ वर्ण है रूप है उसको हम कहेंगे उसका विषय है। तो 5 इंद्रियों के जो विषय है, और मन संबंधी मन का जो कुछ विकल्पात्मक कार्य चलता है, कल्पनाएं करना ये वो करना, तो कहते हैं उससे वो हटा नहीं है, उसमें अभी उसको रस है, रचा पचा है, तो कहते वो इंद्रिय संबंधी उसका असंयम चल रहा है। और हमारे मुनिराज कैसे है, तो उनको इंद्रिय संयम है, इंद्रियों के विषयों में उनको बिल्कुल रस नहीं है। इंद्रिय विजय जिसको हम कहते हैं ना, 5 इंद्रिय विजय, यहाँ तो 6ठा मन भी उसके साथ लिया है। और जिनको ऐसा संयम है उसको कहेंगे इंद्रिय संयम है। ये 6 प्रकार तो इसके हुए। दूसरा नाम क्या बताया था आपको? प्राणी संयम। प्राणी कितने प्रकार के है, जैसे अभी आपने यहाँ सुना है, जीव समाज भी सुने हैं, उसको एक काय मार्गणा होती है, काय मार्गणा का अर्थ है ये जो अलग अलग प्रकार की काया, आपने तो पांच स्थावर काय तो सुने हैं और एक छठा भेद है मालूम है किसी को यहाँ पर, त्रस काय जिसको कहेंगे। पांच स्थावर काय यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और एक त्रस काय, ये छह प्रकार के षटकायिक जीव कहते हैं हम इसको। तो षटकायिक जीवों की हिंसा से विरत होना यानी सावधानी पूर्वक उनके जो आचार वगैरह होते हैं प्रवृत्ति होती है तो इन जीवों की विराधना न हो इस तरह से उनके परिणाम होते हैं, इसको कहते हैं प्राणी संयम। प्राणी इन्हीं पर्याय में जीव पाए जाते हैं तो उनकी हिंसा से वो स्वयं बचते हैं, उनको बचाते हैं वो बात नहीं है, हमें भी हिंसा से बचना है क्योंकि परिणाम का फल मिलता है। क्या कहा, फल जो है या कर्म का बंध भी जो है वो परिणाम के अनुसार होता है, क्रिया के अनुसार नहीं होता। शरीर की क्रिया का बंध नहीं होता, आपने तो शास्त्र में सुना होगा मुनिराज तो देखकर चलते हैं, उसको क्या कहते मालूम है, इरिया संयम। तो देखकर चल रहे, चार हाथ जमीन देखकर चलते है, पैर उठाकर अभी ऐसे रखने को गए उन्होंने देखा था तब कुछ नहीं था, पर कोई ऐसा जीव एकदम आकर उड़कर उसके पीछे पैर के नीचे आके मर गया तो उनको उसके हिंसा का पाप नहीं। तो ये जो हमारे परिणामों का हमें फल मिलता है, अभी गृहस्थ दशा में रहते हुए भी पानी छान कर पीने का जो परिणाम है, अभी छनने में तो कितने ही, क्योंकि तो हम देखते अवगाहना के कितने भेद है तो उसमें भी छन कर नीचे तो चले जाते होंगे, जो प्रासुक करने की विधि बताई है उसमें से भी कितने जीव तो ऐसे ही रहते होंगे, परंतु ऐसा कहता है ये चरणानुयोग की आज्ञा चलती कि चरणानुयोग में जो प्रासुक करने की विधि बताई है उस विधि से हम चलते हैं तो हमारे परिणामों में ऐसे परिणाम है कि हम इन जीवों की हत्या हमसे नहीं हो गई, यहाँ अनेक जीव उत्पन्न न हो, जो कुछ उसकी विधि है सचित्त को अचित्त बनाने की या जो हरी हो तो कैसे खाने, ये सारे जो नियम बताए हैं चरणानुयोग के उसके पीछे का रहस्य यही है कि हम हो सके उतना अपने से इन जीवों की विराधना न हो, क्योंकि हमें तो इन्हें सावधानी पूर्वक जो हम अपने परिणाम है सावधानी पूर्वक हमारा आचार वगैरह करने की उसका फल हमें मिलता है, उसमें कितने जीवों की तो हिंसा होनी है क्योंकि जो ग्रस्त दशा है हम सभी जीवों की हिंसा तो टाल नहीं सकते हैं, परंतु सावधानी पूर्वक तो चल सकते हैं, चलना है सभी अपने सब जो कुछ प्रवृत्तियां हैं वो सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो संयम दो प्रकार का, कौन से दो प्रकार, हाँ इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम कितने प्रकार का देखा हमने, छह, और प्राणी संयम छह, टोटल कितने हुए, बारह। तो बारह प्रकार के व्रत के परिणाम या विरत के परिणाम कहो संयम के परिणाम को, जिनको ऐसा संयम नहीं है ना इंद्रियों से उसके विषयों से हटे हैं और ना ही षटकायिक जीवों की विराधना से जो हटे हैं, ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाले जीवों को असंयमी कहते, यानी उन्होंने बाह्य में व्रत नहीं लिए इसलिए असंयम नहीं कहते। जिनको ये मुनि योग्य अंतरंग में वितरागता नहीं हुई है ऐसे जीवों ने बाह्य में ऐसे व्रत बिल्कुल बुद्धिपूर्वक उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की हुई या कोई पांचवे गुण स्थान वालों ने अनुव्रत भी ग्रहण किया हुआ परंतु अभी उसको आत्मा का अनुभव नहीं है तो उन सबका नाम क्या है, असंयमी, क्योंकि वो संयम ये गुणस्थानों का है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है परंतु वो अभी इनसे हटा नहीं है, उसका नाम क्या है, असंयम, अविरत। तो उसको कितने प्रकार की अविरति है ये मेरा प्रश्न, बारह प्रकार, यानी असंयमियों को बारह प्रकार की अविरति है, संयमियों को बारह प्रकार की विरति है, यहाँ तक तो समझ में हुआ। अब हम संयमा संयम की बात करते हैं, पांचवा जो गुणस्थान है उसमें अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, तो वहाँ अप्रत्याख्यानावरण नहीं रहा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं रहा, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन दो कषाय है उनके, तो उनको क्या कहेंगे, विरता विरत या संयमा संयम उनके कहेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है बारह में से उनको कितनी विरति है और कितनी अविरति, पीछे कोई बता देंगे, हाँ बोलो,
रहती है।
हाँ, आप कोई कहेंगे 12 में से 6-6 है, क्या क्या है पीछे कोई बताएंगे? उन्होंने तो उत्तर बता दिया। हाँ, अनुव्रत है, विरति कितनी है, विरति कितनी है?
हाँ
बोलो बोलो। हाँ हाँ, आप क्या कहते हैं? हाँ बोलो, एक देश यानी कितना, 12 में से प्रोपोर्शन क्या है? देखो 12 में केवल त्रस्काय की हिंसा का त्याग है उनके, बाकी 11 अविरति है। उन्नस्थान पांचवा है ना, इंद्रिय जैसे मुनिराजों को इंद्रिय विजय है, वैसे इनके नहीं है। मुनिराजों के तो स्थावर हिंसा का भी त्याग है, तो वैसे इनको नहीं है, गृहस्थ दशा है ना उनको, पांचवे गुणस्थान वाले को त्रस्काय की हिंसा का त्याग है। यानी एक है वो विरति है और 11 है वो अविरति है, और उसका कहेंगे हम संयमा संयम। और जो संयम है मुनिराजों के, जो संयम होता है उसमें यहाँ दो प्रकार बताए, जो अंतरंग में जो स्थिरता शुद्धोपयोग में है तो उसको कहेंगे उपेक्षा संयम, और जब शुद्धोपयोग में नहीं है, छठे गुण स्थान वाली बात है, तो उसमें उसका नाम है अपरत संयम। यानी उसमें जो उनका जो प्रवृत्ति होती है, चलने की है, सोने की है, जो कुछ बैठने की है, तो वो कैसे है, तो समिति पूर्वक होती है। एक होती है निवृत्ति यानी अंतरंग में स्थिरता, जो गुप्ति स्वरूप होती है, तीन गुप्ति के, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, यानी इनका लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा में स्थिर हुए, वही उनके खरेखर संयम है। परंतु जिनके ऐसा संयम है, वो जब अपने अंतरंग में स्थिर नहीं हो पाते, छठे गुणस्थान की बात है, तो वहाँ उनके कैसी प्रवृत्ति होगी, तो पांच समिति पूर्वक कहेंगे, वो देख कर चलना है, क्या क्या है, यानी पांच समिति के नाम मालूम है आपको? मालूम है नहीं मालूम? यहाँ किसी को, हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें देव का स्वरूप, मुनियों का स्वरूप और शास्त्र का स्वरूप निश्चित करना है, पहली कंडीशन ये है। क्योंकि हमें ये मार्ग हमें आगे चलकर हरेक को करना है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसके पहले अरिहंत अवस्था तो होनी है, और हम आपको अरिहंत बनना है तो उसके पहले हम मुनि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अभी इस पर्याय की बात छोड़ो, पर हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है, धर्म प्रकट करना है, तो चौथे गुणस्थान से लेकर चौदह गुणस्थान तक और सिद्ध, इन सबका स्वरूप का निर्णय अभी होगा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, तब जाके चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। बाहर कौन से जीव के क्या चल रहा है, क्या परिणाम है, उसकी चर्चा नहीं करनी, हमें ये मार्ग प्रकट करना है, तो हमारे मन में बिल्कुल पूरा ही जो मोक्ष मार्ग है वो क्लियर, जैसे हाथ में रखे आंवले की उपमा देते हैं कि हाथ की रेखा जैसे स्पष्ट दिखती है, वैसे पूरा मोक्ष मार्ग चौथे से लेकर चौथा पांचवा छठा सप्ताह प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप हमारे मन में ज्ञान में स्पष्ट भाषित होना चाहिए, तभी ये मार्ग प्रकट होगा, उसके बिना मार्ग प्रकट नहीं होगा। हम कहीं यहाँ से कहीं जाते हैं, हम कार लेके जाना है, जैसे कैसे जाना है, तो पूरे आगे का मार्ग हमें पहले हम मालूमात कर लेते हैं कि कौन से रास्ते से किस रूट से हमको जाना है, वहाँ कहाँ ठहरने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, क्या क्या सुविधाएं कहाँ है, ये तो पहले नक्की कर लेते हैं। यहाँ सुविधा की बात नहीं है, हमें जिस मार्ग को प्रकट करना है, धर्म प्रकट करना है, चौथे से लेकर पूरे यानी चौथा पांचवा छठा सातवा, ये हमारे ज्ञान में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही इसका स्वरूप है और ये हमें आगे चलकर प्रकट करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये पांच समिति के नाम, क्योंकि मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं और अद्भुत उनका स्वरूप है, मुनिराज का स्वरूप भी, इसको भी ना मार्ग सम्यक्त्व, अरे मुनिराजों की चर्या देखकर भी किसी को सम्य दर्शन होता है। कैसे होता है कि वो विचार करता है तत्वों का, अपने आत्मा में लीन हो जाता है और उसको सम्यक्त्व होता है। एक होता है आज्ञा सम्यक्त्व, बस सरल हृदय से जो जो बताया है उसको स्वीकार कर लेता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे प्रश्न नहीं लगाता, तो ऐसा सरल हृदय है उसको जल्दी सम्यक्त्व हो जाता है, उसको आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। एक होता है बीज सम्यक्त्व, आपने बोला था ना चारों अन्य गुणों से कैसे हो जाता है सम्यक दर्शन, बीज समय तो मालूम है क्या है, ये करनाल युग के जो कुछ ये कठिन विषय है तो उसमें उपयोग इतना जिसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बात नहीं समझती या उसकी याद भी नहीं आता। तो उस सूक्ष्म विषय को पकड़ते पकड़ते वहां से अपना उपयोग हटकर अपने आत्मा को पकड़ लेता है, परंतु उसके लिए सात तत्वों का सही बिल्कुल निर्णय होना आवश्यक है, तो उसको वो बीज सम्यक भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग, उसके 10 भेद तो बताए ही बताए। तो यहाँ अपनी बात चल रही थी संयम की, तो मुनिराजों के अंतरंग में स्थिरता है उसका नाम था उपेक्षा संयम, परद्रव्यों से बिल्कुल उदासीन होकर अपने में लीन है, और जब वो नहीं है तब उनके जो होता है उसको कहेंगे अपरत संयम। तो जो मुनिराजों के जो 28 मूल गुण है कौन कौन से है, मुख्य मुख्य नाम तो मालूम है कि नहीं मालूम, पांच महाव्रत, बहुत अच्छा, हाँ पांच समिति, तीन गुप्ति 28 में नहीं आती, वो तीन गुप्ति ना चारित्र में हम लेते हैं, पांच इंद्रिय, पांच पांच ही ना, पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, हाँ छह आवश्यक और सात शेष गुण, वो नग्नत्व, स्नान, भूमि शयन वगैरह वगैरह सब। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि पांच समिति उनका आचरण जो होता है सावधानी पूर्वक जो है वो कैसे, उसको कहेंगे ये प्रवृत्ति रूप है ना, और मुनि जीवन कैसा है एक्चुअली, चारित्र कैसा है निवृत्ति रूप, पर जहाँ अंतरंग में स्थिरता नहीं है तो नहीं नहीं अंतरंग में स्थिरता तो है, बाहर चाहे जैसा प्रवर्तन हो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वस्त्र पहने हैं और हमने अंतरंग में वो सातवां गुण स्थान किसी ने प्राप्त किया घर में रहते थे, ऐसा नहीं होता, तीन काल में ऐसा नहीं हो सकता, इसका सुमेल होना चाहिए। कोई ऐसा कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो शुद्धोपयोग कर लिया और कपड़े पहने हुए है, कोई गृहस्थ है और घर में रहते रहते उन्होंने मुनि दशा प्राप्त की सातवां गुण स्थान, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहते हैं गृहस्थ को केवल ज्ञान होता है, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। ये सारे अकाट्य नियम जो है करनाल योग के कहो या जो मोक्ष मार्ग के, उसमें कोई अपवाद नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं ये पांच समिति किसको कहेंगे, पांच समिति के नाम मालूम है किसी को, हाँ बोलो, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आधार निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। तो ईरिया समिति ने चार हाथ जमीन देख देख चलते हैं, तब कैसे चलते हैं कि सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पहले चलेंगे, मौन से चलेंगे, हम जाते हैं रास्ते में अरे एक बिल्ली ये नहीं है, पहली नहीं थी, और ये कौन सा ये दुकान नया है, और भले वो पैर के नीचे कुछ भी जीव कुचल कर मर रहे, उनके तो बस सामने देख कर चल रहे, और फिर आपने तो देखी होगी कैसी कैसी विधि लोग चलते हो, उसको कहते हैं ईरिया समिति। भाषा समिति में प्रिय और मित्र वचन बोलेंगे, वो तो हमने सत्य धर्म के उसमें हमने देख लिया था। ऐषणा समिति किसको कहते हैं, ऐषणा ने भोजन संबंधी, तो एक कर्पात मैंने इससे हाथ में लेते हैं, एक बार लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, उसके जो सारे नियम सारे जो अंतराय वगैरह टाल कर, वो दाता कौन है, दाता संबंधी नियम होते हैं, पात्र संबंधी नियम है, वहाँ पे जो ले लेते हैं उस संबंधी नियम है, वो कैसे टाल कर अंतराय टाल कर और दोष टाल कर ग्रहण करना है भोजन, उसके सारे जो नियम है तो उसको कहेंगे वो ऐषणा समिति। आधार निक्षेप तो कैसे समझते हैं ना, उसे रखना या उठाना तो सावधानी पूर्वक, उसमें जीवों की विराधना नहीं होगी, इस तरह से होता है। और उत्सर्ग समिति कहो या प्रतिष्ठापन, यानी वो मलमूत्र विसर्जन करते हैं उस संबंधी भी उसके नियम है, ये इस तरह से उसमें भी बहुत सारे भेद प्रभेद बताए हैं जो चरणानियोग के ग्रंथ होते हैं। देखो चरणानियोग के ग्रंथों में ऐसा करना चाहिए ऐसी वहाँ उपदेशात्मक भाषा होती है, कोई भी चरणानियोग का ग्रंथ ले लो कोई भी, उसमें सर्वप्रथम अधिकार होता है समय दर्शन अधिकार, क्योंकि जो समय दर्शन प्राप्त करता है ऐसे समय दृष्टियों को उपदेश देते हैं कि अभी क्या कर रहा है, तो समय दर्शन हो गया उसको तुम मुनि धर्म अंगीकार कर, ऐसे जीवों को मुनि धर्म का, परंतु समय दर्शन है ही नहीं है, तत्वों का अभ्यास नहीं है, और ऐसे जीवों को नहीं उपदेश देते। ये तो ये उपदेश जो दिया जाता है जो श्रावकाचार्य हो या मुनि के आचार्य के ग्रंथ है, जिन्होंने समय दर्शन प्राप्त किया है, आत्मा की अनुभूति प्राप्त की है, ऐसे जीवों को और आगे बढ़ने के लिए, यानी आगे बढ़ेंगे कैसे, अपने अंतरंग में अधिक स्थिरता करते हुए। पर ऐसे जीवों के बाह्य जो चौथे वाला है उसको कहेंगे अनुव्रतों का पालन करने के लिए उसका उपदेश देंगे। ये उपदेश यानी चरणान योग की भाषा है, परंतु यहाँ द्रव्यान योग के सिद्धांतों के कहीं पर भी आँच नहीं आती। द्रव्यान योग के सिद्धांत जो है, यानी वो बाह्य में व्रता अंगीकार किए इसलिए ऊपर का गुण स्थान प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो सहज सुमेल होता है, वो बैलेंस है उसमें, कहीं पर भी किसी का उल्टा पुल्टा नहीं है कि उसने ग्रहण नहीं किए फिर भी सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ और बाद में जाके दीक्षा ली, ऐसा नहीं होता। तो फिर पहले अगर हो सकता है तो बाद में दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, समझ में आती है ना। तो इस तरह से मुनियों के क्या क्या है, समिति क्या है, महाव्रत क्या होते हैं, ये सब इस संयम में आता है। फिर वो संयम के भी अनेक भेद प्रभेद बताए गए हैं, अभी वो भेद प्रभेद अपना विषय नहीं है यहाँ पर, वो सारे करणानियों के ग्रंथों में उसकी जो चर्चा आपने जो नाम बताए हैं, अब हमारा विषय तो यही रुकता है। बोलो 2400 भगवान।